ये आकाशवाणी है। अब आप नेहा गोस्वामी से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा और उत्तराखंड का दौरा करेंगे। वे भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन के दौरान 100 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें 3.5 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित हो सकते हैं। प्रधानमंत्री 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने के लिए देहरादून भी जाएंगे। यह खेल उत्तराखंड में राज्य की स्थापना के रजत जयंती वर्ष के दौरान आयोजित किया जा रहा है। भारत और चीन ने 2025 की गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। विदेश सचिव उपमंत्री प्रणाली मौजूदा समझौतों के अंतर्गत इस विषय पर चर्चा करेगी। दोनों पक्ष जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों के प्रावधान और सीमा पार नदियों से संबंधित सहयोग के अन्य क्षेत्रों को फिर से शुरू करने और इस मुद्दों पर चर्चा के लिए भी सहमत हो गए हैं। दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सुविधा फिर से शुरू करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत एक साथ चुनाव कराने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बार बार चुनाव कराने से देश के लिए किए गए कार्यों की गति में बाधा आती है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के विकास में युवाओं के योगदान की सराहना की। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में युवाओं ने 1,50,000 से अधिक स्टार्टअप शुरू किए हैं। एनसीसी कैडेटों के योगदान की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीसी ने निरंतर युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करेंगी। केंद्रीय बजट पेश होने से पहले एक विशेष श्रृंखला में आकाशवाणी समाचार केंद्रीय बजट से संबंधित विशेषज्ञों और लोगों की उम्मीदों को सामने ला रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर जेपीएस डबास ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अपनी अपेक्षाएं साझा की। भारत और नेपाल ने कल काठमांडू में संयुक्त परियोजना निगरानी समिति की 5वीं बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के अपर सचिव उत्तर मुनु महावर ने की, जबकि नेपाल का नेतृत्व संयुक्त सचिव पद्म कुमार मैनाली ने किया। इस बैठक में स्वास्थ्य और सांस्कृतिक विरासत क्षेत्रों में हुई प्रगति पर दोनों पक्षों ने सहमति जताई। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में दोषी संजय राय की मौत की सजा पर पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर कल अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति देवांशु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद सब्बार रशीदी की खंडपीठ ने की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल जम्मू के अभिनव थिएटर में हिंदी, डोगरी और उर्दू भाषाओं में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल ने डोगरी, हिंदी और उर्दू भाषाओं के महान साहित्यकारों को श्रद्धांजलि दी और समाज में कवियों और लेखकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने शबे मिराज के अवसर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस्लामी मान्यताओं के मुताबिक इस दिन पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। उत्तराखंड में कल से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करते हुए व्यक्तिगत नागरिक कानूनों का मानकीकरण करना है। संहिता के अंतर्गत राज्य में अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर सभी धर्म के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत पर एक समान नियम होंगे। कर्नाटक उच्च न्यायालय की धारवाड़ पीठ ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण के कथित भूमि आवंटन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की पत्नी बीएम पार्वती को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। श्री सिद्धरमैया की पत्नी को रविवार को बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने के लिए बुलाया गया था। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा 2020 क्रिकेट मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना चुका है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से और दूसरे मैच में 2 विकेट से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।